ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 19वें G20 शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत महेश सचदेव, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना।
महेश जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार ब्राजील इसकी मेजबानी कर रहा है G20 समिट की, और इस बार का विषय है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानेट। क्या महत्वता है, कितना सिग्निफिकेंट है?
G20 एक बहुत ही अनूठा संस्थान है। इसकी स्थापना 1999 में हुई, जबकि विश्व एशिया के आर्थिक संकट से जूझ रहा था, और ये पाया गया था कि G7 के पास इतनी सलाहियत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि इस संकट के लिए वो समाधान अपने साथ देशों, बड़े विकसित देश या इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, औद्योगिक देश खुद कर पाए। उनको ये महसूस हुआ कि इससे बड़ा एक फोरम होना चाहिए, इससे बड़ा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए,
जी
तो G20 का संगठन हुआ। और तब से इसकी हर साल समिट होती जा रही है, और इसका उपयोगिता मानी गई है, क्योंकि इसमें आज अगर देखें तो 85% जो सकल घरेलू उत्पाद है दुनिया का, वो इन 20 देशों में है।
जी
75% वैश्विक व्यापार इन देशों में है। 56% आबादी इन
आबादी
देशों में रहती है,
जी
और 60% क्षेत्रफल जो विश्व का है वो इन देशों में
देशों
है।
में।
इसके साथ EU और अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ दें तो ये विस्तार और बढ़
और
जाता
बढ़
है।
जाते
एक तरह से विश्व के 4/5 जो तत्व हैं आर्थिक समन्वय के लिए जिनकी जरूरत है, वो सब इनके बीच में
जी
समाहित है। तो इसमें 19वां जो शिखर सम्मेलन हो रहा है वो रियो डी जनेरो में हो रहा है,
जी
इसका अपना महत्व है। पिछले 3 सम्मेलन जो हुए हैं वो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज में हुए हैं, सऊदी अरेबिया, भारत और अब ब्राजील, और इसके बाद वाला भी साउथ अफ्रीका में होने वाला है, जो भी ग्लोबल साउथ का
ग्लोबल
हिस्सा है।
साउथ का हिस्सा।
तो एक तरह से ग्लोबल साउथ को एक आवाज उठाने का, अपने मुद्दों पर,
मंच,
अपने
वैश्विक
हितों
मंच।
पर एक बड़ा मंच इससे मिलता है। ब्राजील में जो इस समय शासन है वो काफी ग्लोबलाइज्ड है। लूला डे सिल्वा जो राष्ट्रपति हैं वो एक लेबर लीडर रहे हैं अपने जमाने में, उनकी अपनी ख्याति है। अगर हम G20
G20
की 19वीं शिखर सम्मेलन है इसकी बात करें, तो इनके जो मुख्य पहलू हैं जिनका आपने जिक्र किया, वो सोशल इंक्लूजन, जो 3 प्रायोरिटीज हैं,
जी, तीन
तीन
मुद्दे के
तीन मुद्दे जो हैं
जी
मुख्य मुद्दे इन्होंने चुने हैं अपने G20 के काल के लिए, वो सोशल इंक्लूजन, एनर्जी ट्रांजिशन और रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस के
जी
हैं। ये तीनों मुद्दों पर भारत और ब्राजील में कोई मतभेद नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, तीनों मुद्दों पर हमारे काफी शक्तिशाली हमारी मुहिम है,
जी
और इस मुहिम का आगे बढ़ते देख करके भारत को एक तरह से भरोसा मिलता है कि जो काम उन्होंने अपने G20 की प्रेसिडेंसी में किया है उसको आगे बढ़ाया जा
बढ़ा
रहा
जाएगा
है, उसकी विरासत को सींचा जा रहा है।
जी। इस वक्त आकाशवाणी की संवाददाता साक्षी सिंह ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन को कवर करने के लिए मौजूद हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ जानकारी उनके पास है।
19वां G20 समिट आज रियो डी जेनेरियो में शुरू हो गया है। कुछ केंद्र बिंदु जो इस G20 के चर्चा का विषय रहे हैं, उसमें सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। इस वर्ष 2 दिन होने वाले इस सम्मेलन में कुल मिलाकर 4 प्लीनरी सेशन होंगे। उसमें से सर्वप्रथम ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी होगा, जो ब्राजील की अध्यक्षता के अंदर एक प्रमुख विषय रहा है। उसके बाद दूसरा प्लीनरी सेशन रहेगा ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूट, उनमें सुधार। उसके बाद 2 और सेशन जो रहेंगे वो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी ट्रांजिशन पे होगा। ये देखना बहुत जरूरी है कि कैसे सदस्य इन विषयों पे चर्चा करते हैं और एक समन्वय लाकर इस साल के घोषणा पत्र को सफल बना पाएंगे।
आपने ग्लोबल गवर्नेंस की बात करी कि इसमें रिफॉर्म लाने की, तो कितना जरूरी है जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस या WTO है, इनका मॉडर्नाइज करना इनको कितना जरूरी है आज के समय में?
इसके बारे में दो राय कोई नहीं दे रहा है,
जी
सब इससे सहमत है, पर मोडालिटीज पर फर्क है। तो और मोडालिटीज के फर्क को लेकर के कई लोग जो कि स्टेटस को से फायदा उठा रहे हैं, वो उसमें परिवर्तन नहीं होने देना चाहते।
जी
वो चाहते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के बाद से जो ग्लोबल आर्किटेक्चर बना है उसको बनाए रखा जाए। और जबकि उस समय ज्यादातर देश आजाद नहीं थे, ग्लोबल साउथ नाम की कोई चीज ही नहीं थी, वो उपनिवेश थे। आज वो उपनिवेश से स्वाधीन देश बने हैं, और स्वाधीन देश ही नहीं बने, उनमें से कई विश्व की बड़ी बड़ी आर्थिक शक्तियां बनी हैं। तो इसमें दो तरह से मैं इसको देखता हूँ। पहली बात तो ये कि जैसा मैंने जिक्र किया कि G20 आखिरी ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि सुधरा हुआ है, और इसकी सफलता अगर होती है पुराने प्लेटफॉर्म के मुकाबले में, तो वो दिखाएगा कि ये एक रोल मॉडल बन सकता है, और ग्लोबल साउथ का जो दौर है, जो उनका उपयोगिता है, उसकी विश्व को जरूरत है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे निशस्त्रीकरण की बात हो, चाहे पेंडेमिक्स के लड़ने की बात हो, या जो भी कुरीतियां हैं, चाहे वो अशिक्षा हो, अस्वास्थ्य हो, या फीमेल म्यूटिलेशन हो, इन सब चीजों के लिए, या इलीगल माइग्रेशंस हो, इन सब से जो कुपित हैं हम लोग, उनसे बदलने के लिए G20 का रोल अगर दृढ़ता से प्रस्तुत किया जाता है और सफल होता है, तो ये दबाव और बनेगा कि उन जो पुरानी बैसाखी पर चल रही हैं जो संस्थाएं, उनमें भी ऐसा परिवर्तन किया जाए और उनकी भी प्रभाविकता अच्छी बनेगी।
जी, जलवायु परिवर्तन निरंतर चर्चा में रहता है तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में, या फिर जब भारत ने भी मेजबानी करी तब भी ये एक अहम मुद्दा था, और ये एक बढ़ती हुई समस्या और गंभीर समस्या है। तो आपकी नज़र में क्या कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, या फिर क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है कि इससे निजात पाया जा सके?
फिर से यही कहना पड़ेगा कि जो इस बारे में बहुत कम लोग हैं जिनके भी दो राय हैं, पूरा विश्व एक है जहाँ तक जलवायु परिवर्तन की बात है। कोई भी चाहे जितना शक्तिशाली देश हो, उसको इससे अलग हो करके उसको निजात नहीं मिलने वाली, उसके ऊपर भी वही प्रभाव पड़ेगा
जी।
बल्कि ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि कई जलवायु की परिवर्तन है वो लोकलाइज्ड है। अगर जहाँ पर ज्यादा कंजम्पशन होता है वहीं पे ज्यादा बाढ़ें आती हैं, या वहीं पे ज्यादा तूफान आते हैं, या वहीं पे ज्यादा जो वनों का नाश होता है वगैरह, और लोकल वायु का परिवर्तन होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है वगैरह वगैरह, तो इसको एक तरह से रोका जाना चाहिए
जी।
ढाढ़स बंधाना चाहिए कि तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें भी इसकी जरूरत है। दूसरी तरफ जो पहले आप की जो इसमें चल रही है परंपरा, उसको तोड़ना होगा, उसका विरोध करना होगा। ऐसा नहीं है कि पहले तुम करोगे तभी मैं करूंगा,
किसी को
पहल लेनी पड़ेगी और सबको एक साथ पहल लेनी पड़ेगी। फिर सेग्रीगेटेड एंड प्रोपोर्शनेट जो इसके जो समाधान किए जा रहे हैं उनके ऊपर सख्ती से अमल करना होगा। ये जो जलवायु के परिवर्तन की विरासत है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जमाने से है, जिस समय भारत और चीन जैसे देश उद्योगवान थे ही नहीं। पर कैपिटा कंजम्पशन या पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैसेस की बजाय पूरे देशों का किया जा रहा है। तो एक देश जिसकी आबादी 5 लाख है और एक देश जिसकी आबादी 144 करोड़ है, बराबरी स्तर पे कैसे किए जा सकते? तो ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो या फंडिंग हो, इन सब चीजों के लिए जरूरत है G20 जैसे एक आंदोलन की
जी,
जिससे कि दबाव बनाया जाए।
पिछले साल भारत ने मेजबानी इसकी की थी और भारत का थीम था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारत की कितनी अहम भूमिका है G20 शिखर सम्मेलन में, किस तरीके से आप इसको देखते हैं?
भारत का दौर अलग ही है। सबसे पहले तो भारत इस समय विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, 5वां सबसे आर्थिक शक्तिशाली देश है, और जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह की बात है, जहाँ तक जिम्मेदाराना व्यवहार की बात है विश्व की आर्थिक और सामाजिक आर्थिक समस्याओं से जूझने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना हुई है। हमारे ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस जो हैं वो 1/10 या 1/15 माने जाते हैं या 1/3 माने जाते हैं विकासशील विकसित देशों के मुकाबले में। और इसी तरह से चाहे वो प्रदूषण की बातें हों, चाहे वो प्रति व्यक्ति बिजली के खर्चे की बातें हों या और चीजों की बातें हों, हमारी जीवन शैली हो उसका, चाहे वेजिटेरियनिज्म हो, इन सब का असर फुटप्रिंट कम से कम होता है वैश्विक स्तर पर। भारत की जो मॉडलिंग है उसको अगर प्रसारित किया जाता है G20 के माध्यम से तो बेहतर होगा।
जैसे जैसे हम देख रहे हैं वक्त आगे बढ़ रहा है तो दुनिया डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ती जा रही है, और भारत ने भी इसका समर्थन किया डिजिटल सॉल्यूशंस का अपने G20 डिस्कशंस में भी, और अगर स्पेशली हम बात करें साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंक्लूजन। तो आपको क्या लगता है कि इस बार भारत की इन बातों को किस तरह और मजबूती मिलेगी इस बार के G20 शिखर सम्मेलन में?
बहुत मुहिम और व्यापक मुद्दा बन गया है। देखिए, 4 साल पहले तक एक तरह से डिजिटल इंक्लूजन इजबारी या लाजमी हो गया था। कोविड के जमाने में वर्क फ्रॉम होम था और आपसी संपर्क कम से कम किया जा रहा था। जैसा आपको याद है, सऊदी अरब की जब G20 की समिट हुई थी तो समिट वर्चुअली हुई थी और लोग सऊदी अरब नहीं गए थे, दूर से ही सलाम एक दूसरे को कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भारत ने उसके मेजबानी की और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि ऐसी कोई मजबूरी अब नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी डिजिटल इंक्लूजन का अपना महत्व है। चाहे वो UPI हो, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, चाहे वो शिक्षा में इस्तेमाल हो या चिकित्सा में इस्तेमाल हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बातें हों, चाहे व्यापकता और मुद्दों के लिए जरूरी हो, स्केल अप करना हो, तो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका बड़ा उपयोग है और उस उपयोग का दोहन किया जाना चाहिए। ये भारत ने अपने G20 के काल में बताया और दिखाया और उदाहरण प्रस्तुत किए और इससे मेरे ख्याल से अच्छा संदेश गया है और एक दिलचस्पी इस बारे में बहुआयामित फायदे जो इसके हो सकते हैं, चाहे वो सोशल इंक्लूजन हो, चाहे इकोनॉमिक इंक्लूजन हो, चाहे बेटर गवर्नेंस हो,
रिफॉर्म्स की बात हो,
उन सब रिफॉर्म्स की बात हो
जी,
या एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको देने की बात हो, वो सामने आया जी। है।
अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आपने चर्चा की शुरुआत में आपने हमें की फोकसेस बताए, फोकस एरिया इस बार के क्या क्या है, इन सबको पूरा करने में आपको क्या लगते हैं कि कौन से प्रमुख चुनौतियां हो सकती हैं
इसमें? जैसा मैंने कहा कि कोई इसका विरोध तो सामाजिक तौर पे नहीं करेगा
जी,
चाहे वो सोशल इंक्लूजन हो, चाहे वो एनर्जी ट्रांजिशन हो और चाहे वो रिफॉर्म्स हो, लेकिन निहित स्वार्थ आ जाते हैं, चाहे वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हों, चाहे वो तेल उत्पादक देशों के हों, खनिज उत्पादक देशों के हों, तो उनसे उनको निरस्त करने के लिए एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। कैसे उनसे व्यापक तौर पर कंसेंशुअली उनको सर्वमान्य तरीके से इन चीजों के लिए एक समता बनाई जाए, तो ये सबसे बड़ी चुनौती एक कंसेप्चुअल लेवल पर है। तो दूसरी तरफ आर्थिक फर्क जो G20 के देशों के बीच में, उनके ऊपर भी हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्तर पर जब उसका विरोध होता है, प्रतिरोध होता है, वो ये है कि नए स्ट्रक्चर ना पैदा किए जाएं जो इनके पास पैसा हर कोई दे और वो फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का काम करें। ये अमीर देश ये चाहते हैं कि ये ऐसा कुछ ना
ऐसा ना हो,
तो और इसके बिना कैसे वो खुद भी करना नहीं चाहते हैं, कंपनियां भी पैसे लेकर के करना चाहती हैं, चाहे एनर्जी का ट्रांसफर हो, चाहे और चीजें हो, तो वो आर्थिक हित के लिए वो चाहती हैं। तो ये सब चीजें जो है हमें बनाना होगा, एक साझा जो भी शैली बनाने की जरूरत है उसकी भी एक आवश्यकता है
जी। तो श्रोताओं, अब वक्त है आज की इस चर्चा को यहीं विराम देने का और इस शिखर सम्मेलन से दुनिया को कई उम्मीदें हैं और ये देखना होगा कि ये हमारी जिंदगी को और आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करेगा। और हम डॉक्टर महेश सचदेव का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप आकाशवाणी के साथ बातचीत के लिए आज की चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया।
अभी आप सुन रहे थे 19वें G20 शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत महेश सचदेव, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।